जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ ग्रीवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, नमः विष्णुपदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा,
हरे कृष्ण। ज्यादा समय नहीं लेंगे कीर्तन में क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, सुनाना चाहता हूँ सो जल्दी जल्दी करेंगे।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
चैतन्य महाप्रभु की तो आज जो मुझे टॉपिक दिया है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, नौमी मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए बस, जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, सुनिए।
नामितम गौरचंद्रम ग्रह कुतर्क कर्कशाश्यम सार्वभौमम सर्वभूम भक्ति भूमान चारता, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आगार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं, कुछ तो केवल ब्रह्मवादी होते हैं, निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी, कुछ योगी भी होते हैं जो अष्टांग योग वगैरह करते हैं परमात्मावादी, और अंत में भक्त भी होते हैं। सबसे उच्च स्थिति भक्तों की होती है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में। एक्चुअली भगवान की बहुत कृपा है इनके ऊपर। भगवान ने लास्ट में बोला भी है कि मैं आपका उद्धार करने के लिए आया हूं, आपसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में। ये ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये फिलॉसफी शंकराचार्य भाष्य के ऊपर इन्होंने ज्यादा पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत्य चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। सो यहां से अभी पूरी कथा शुरू होती है, तीसरे श्लोक से। आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हाईले स्थिरे। यहां से शुरू करेंगे हम। तो शॉर्ट में पहले, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन है, थोड़ा सा समरी में उनके बारे में भी जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा। पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने के जो प्रवर्तक हैं, फाउंडर, वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, और नवद्वीप बंगाल में ये प्रकट हुए हैं। श्रीधाम मायापुर फागुन पूर्णिमा को 1407 शक संबत में, और इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र सिलहट के रहने वाले थे, एक्चुअली वो बांग्लादेश में रह गया वो, और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे ये, और उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती जो बड़े विद्वान थे नवद्वीप में, उनकी पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह किया था, और जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी सची माता के बहुत सारी पुत्रियां भी हुई, लेकिन छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अंत में दो पुत्र बचे, विश्वरूप और विशंबर। विशंबर जो हैं उनकी दसवीं और सबसे छोटी संतान है, आगे चल के निमाई पंडित के नाम से ये मशहूर हुए, और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। जब उनका संन्यास हो गया तो वो अपने माताजी के कहने के अनुसार ज्यादातर कहां रही, जगन्नाथपुरी में। उससे पहले अद्वैताचार्य जी के घर में वो रहे, संन्यास लेने के बाद भी उनके पास रहे, और वहां पर उनका कीर्तन प्रवचन चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जी ने वहां पर घोषणा की कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, आप लोग इस बात का दुख ना मानना, क्योंकि बहुत प्यार करते थे लोग, जो भी हैं भक्त उनके बहुत प्यार करते थे उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि दुख मत मानना, और नीलाचल जाकर के मैं फिर आपसे दोबारा से मिलूंगा। तो उनके साथ
चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, ये आदि साथ और भी लोग थे साथ में। और रास्ते में किसी बात से लेकर के नित्यानंद जी ने उनका दंड भी तोड़ दिया, डंडा जो था संन्यास कर लिया था वो तोड़ दिया था। ये भी एक बहाना बना। सो जय जय गौर चंद्र जय सर्व प्राण जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण जय शेष रमा अजवेरेश्वर जय कृप सिंधु दीन बंधु न्यासवीर। सब जीवों के प्राण और प्राण गौर चंद्र की जय हो, जय हो। दुष्टों के भाग्यदाता, शिष्टों के रक्षक की जय हो। शेष रमा ब्रह्मा शिव के ईश्वर की जय हो। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण है, ये राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो भगवान शिव के भी ये भगवान हैं, ईश्वर हैं। सन्यासियों में श्रेष्ठ कृपा सिंधु दीन बंधु की जय हो, जय हो, जय हो। भक्त मंडली के सहित श्री गौरदेव गौरंग देव की जय हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे आप मेरे मन में स्थिर हो जाएं। ये हमें भी ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु ऐसी कृपा हमारे पे करो कि आप हमारे मन में स्थिर हो जाएं। तो शांतिपुर की ये बात है। शांतिपुर में जब प्रभु ने कहा कि मैं तो नीलाचल जा रहा हूं, और उनके साथ बाद में और भी लोग चल पड़े, जिसमें मुख्य नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य भी गए थे, गदाधर भी गए थे, श्रीवास भी गए थे। सो ब्रह्मानंद भी थे, नाम आए हैं मुकंद, गोविंद और ब्रह्मानंद, ये सारी थे। तो पहले जब जाने लगे तो उन्होंने, जो बाकी साथी थे संगी, उन्होंने बोला कि भाई आप मत जाइए, वो एक्चुअली नहीं जाना दे रहे थे, आप मत जाइए, दो स्टेट्स है रास्ते में, उनका दोनों राजाओं का आपस में युद्ध चल रहा है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, आप मत जाइए। लेकिन गौरहरि बोलते हैं नहीं, मैं तो जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि हां प्रभु आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप जो इच्छा करें वो पूर्ण होती है, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, आप जिसको रखें रख सकते हैं, जिसको मारना चाहे मार सकते हैं, रखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखे के, तो आपकी जो इच्छा है वो बलवान है, आप अवश्य जाइए। तो रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो थोड़ी सी कथा नित्यानंद जी के साथ में होती है, नित्यानंद जी का उनका डंडा तोड़ देते हैं, इससे थोड़ी सी आपस में लगता है कि खिटास है, तो कोई उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा उसमें आपस में झगड़ा हो गया या कुछ बात हो गई है। इसी बात को लेकर के जब नीलाचल पहुंच गए भगवान, तो वहां पर भगवान बोलते हैं कि भाई पहले आप लोग जाओगे कि मैं जाऊं पहले, ये बताओ मुझे, अकेले के लिए जाना चाह रहे हैं, वो तुम पहले जाओ या मैं पहले जाऊं बताओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, इस कहने का भाव यही है। वो बोलते प्रभु नहीं आप जाओ पहले। तो चैतन्य महाप्रभु जी पहले चले जाते हैं, वो पीछे रहते हैं बाकी लोग, और पब्लिक भी आती है। जब वो चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहां पर दर्शन करते ही वो मूर्छित हो जाते हैं। पहले उसके प्रार्थना करते हैं, वो इस किताब में चैतन्य भागवत में बताई गई है, तो वो सारी मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत देर हो जाएगी। तो जब वो बेहोश हो गए, तो उस समय वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहां पर आ गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में कहा गया है कि वो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या निर्विशेषवादी थे, मायावादी जिसको बोलते हैं, मायावादी मैं नहीं बोलता हूं, मायावादी, मायावादी बोलने से आजकल झगड़ा हो जाता है, लोग इतराज करते हैं, वैसे असल में तो मायावादी ही है लेकिन क्यों खामखा झगड़ा करना किसी से, तो ब्रह्मवादी बोल देते हैं, ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी भी शब्द है, निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी। और ऐसा कहा गया है कि वो पुरी के जो राजा हैं उनके मंत्री पद पर भी थे वो, और बड़े विद्वान थे, लायक थे, पूरे शंकर भाष्य उन्होंने पढ़ रखे थे उन्होंने। तो जब महाप्रभु बेहोश होकर गिर गए तो वहां के जो चौकीदार थे गार्ड, वो उन्होंने उनको पीटने के लिए आगे बढ़े, मारने के लिए, ये पखंड कर रहा है ये, तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको रोका, नहीं 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 रुको। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बोला कि इनको मेरे घर ले चलिए, अपने घर ले गए, और बाकी की लीलाएं बाद में पढ़ते हैं हम। सुबारा हाँ, वो मैं बोला ना भगवान की प्रार्थना भी की, तो वो भी सामने मेरे आ गया, तो वो ही पढ़ देता हूं मैं। प्रभु ने कहा, देखो मंदिर के ऊपरी भाग में बैठकर श्री बाल गोपाल कृष्ण मुझको देखकर हंस रहे हैं। कहां पर? जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो वहां पर देख करके। इसी श्लोक को बार बार प्रभु बोले, देख प्रसादेर अग्रमूले हासे न अमारे देखी श्री बाल गोपाले, यही श्लोक पुनः पुनः पढ़िया पढ़िया अछाड़ खाए न प्रभु विवश हैया। प्रभु ने कहा, देखो मंदिर के ऊपरी भाग में बैठकर श्री गोपाल बाल गोपाल कृष्ण मुझको देख करके हंस रहे हैं। इसी श्लोक को बार बार वो बोल रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, इसका वर्णन शेष आदि भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे शुरू में लिखा हुआ है, महाप्रभु गौर सुंदर ने 18 नाला पार करने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। 18 नाला जो वहां के राजा थे उन्होंने नहर के ऊपर पुल बनाए थे 18, उनको पार करके पहुंचे थे वो। ईश्वर की इच्छा से क्या हुआ, जब वो बेहोश हो गए महाप्रभु, तो ईश्वर की इच्छा से, थोड़ा शॉर्टकट बोल रहा हूं, थोड़ा बड़ा छोड़ छोड़ करके, ईश्वर की इच्छा से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य अनायास ही श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए उसी समय आए हुए थे। उसी समय जगत जीवन श्री गौरचंद्र ने जगन्नाथ सुभद्रा व बलराम जी के दर्शन किए। देखते ही श्री प्रभु विशेष जोर से ओंकार करने लगे और जगन्नाथ जी को आलिंगन करूं, ऐसा उनके मन में विचार आया, आलिंगन करूं। ऐसी इच्छा हुई, महाप्रभु आनंद में बेहवल होकर उछलने लगे और नेत्रों का जल चारों ओर पिचकारी की तरह छूट रहा था। किसी आम आदमी के जल आंखों में इतना जल नहीं होता है, भगवान की आंखों में इतना पानी निकल रहा है जैसे पिचकारियां चल रही हैं। महाप्रभु एक क्षण में ही आनंद विभोर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। ओहो, तब सार्वभौम जैसे तैसे प्रभु के पीछे निवारणार्थ आगे। सार्वभौम महाशय ने हृदय में विचार किया कि मनुष्य में इस प्रकार की शक्ति तो किसी काल में नहीं होती, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता कि इतना पानी निकल रहा है, को पिचकारियां निकल रही हैं, ऐसी हुंकार, ऐसी गर्जना, ऐसी प्रेमानंद की अश्रुधारा आदि जो इनमें है, सब अलौकिक शक्ति का ही प्रकाश है। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं राधा कृष्ण ही हैं, कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, अन्य नहीं है। लेकिन सर्वभव भट्टाचार्य अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है, जबकि चैतन्य महाप्रभु के जो बाकी संगी साथी थे उनको पता चल चुका था कि ये स्वयं कृष्ण ही हैं। तो उसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य उसी नाते से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि ये भगवान है। यह मनुष्य संभवतः श्री कृष्ण चैतन्य है ऐसा समझ पड़ता है। दिमाग थोड़ा ला रहे हैं कि हाँ लगता है कि महाधन्य सार्वभौम इस प्रकार विचार करने लगे। सार्वभौम के निवारण करने पर सब रक्षक गण दूर हो गए। जब वो मारने लगे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले नहीं 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 परे हट जाइए, ये कोई बड़ा पुरुष लगता है, महान पुरुष लगता है, इसको आप मत छिड़िए। अपने प्रिय विग्रह जगन्नाथ को देखते मात्र ही श्री गौरचंद्र अचेतन के समान हो गए। वैकुंठनाथ श्री गौर ना जाने किस आनंद में मगन थे। क्या जब हम राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं तो ये भाव हमारे में आते हैं? नहीं आते हैं। दर्शन तो करते हैं, हम भगवान को क्या देख सकते हैं इस चमड़े की आंखों से? नहीं देख सकते। हाँ, इतना समझ लीजिए कि भाई भगवान हमें देख ले वही काफी है। भगवान देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हम घंटों भर देखते रहेंगे भगवान को, लेकिन कोई पूछे कि क्या देखा आपने तो कुछ भी नहीं। क्या कपड़े पहने हैं, क्या माला पहनी है, नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। ये वहां बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी, ये ऐसा भाव होना चाहिए। इन सब तत्वों को जानना वेदों को भी दुष्कर है। गौरचंद्र प्रभु ही चतुर्भुवी रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा सुदर्शन है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और उनका जो सुदर्शन है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ही हैं, अलग नहीं है। एक ही के सबके रूप हैं, वो चारों रूप एक ही के हैं। स्वयं सिंहासन से सिंहासन पर सुख से विराज रहे हैं और आप ही उपासक होकर भक्ति कर रहे हैं। वो खुद ही सिंहासन पर बैठे हुए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, और एक तरफ सामने बैठे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी। उनमें कोई अंतर नहीं है, सेम वही। उधर चतुर्व्यूह में बैठे हुए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और चक्कर के रूप में, और सामने भक्त के रूप में वो खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु जी। वहां पर ना जाने कौन से आनंद में डूबे हुए हैं ये गौरचंद्र प्रभु की चतुर्व्यूह रूप से स्वयं सिंहासन पर सुख से विराज रहे थे और आप ही उपासक होकर भक्ति कर रहे हैं। इसी कारण उन ईश्वर की शक्ति को कौन समझ सकता है? अपने तत्व को प्रभु आप ही जानते हैं। वेद व भागवत इस प्रकार व्याख्या करते हैं, तथापि जिस प्रभु को जो लीला करते हैं उसे वेद जीवों के उद्धार का कारण ही बतलाते हैं। जो भगवान जितनी भी लीला करते हैं, चाहे वो द्वापर युग में किए हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो जीवों का उद्धार करने के लिए करते हैं वो लीलाएं। जी गौरचंद्र वैष्णव आवेश में मगन हो गए, वह ये ज्ञान जाता रहा तथा प्रेम सिंधु में डूब गए। सार्वभौम स्वयं चारों तरफ संभाल रहे थे, परंतु प्रभु की आनंद मूर्छा नहीं टूट रही थी। तब अंत में सार्वभौम प्रभु को अपने घर ले गए और मन में विचार किया, प्रहारियों को संबोधन करके कहा, हे भाई, इस पुरुष रत्न को सब मिलकर उठा लो। और जैसे जगन्नाथ जी का जो रथ चलता है उसमें डोरी खींचने वाले होते हैं, रस्सा खींचने वाले होते हैं, उसी तरह इनको मेरे घर मेरे भवन में ले चलो। ईश्वर के गंभीर चरित्रों को कौन समझ सकता है? यदि श्री नित्यानंद प्रभु का दंड भंग ना करते तो महाप्रभु अकेले मंदिर में ना जाते। यहां पर बोल दिया, रास्ते में तो आपस में थोड़ा खटपट हो गई थी ना, तो नित्यानंद जी ने डंडा तोड़ दिया था। अगर वो डंडा नहीं तोड़ते, दंड नहीं तोड़ते, तो महाप्रभु अकेले नहीं जाते, और अकेले नहीं जाते सारे साथ में जाते, कम से कम चार पांच तो थे और भी पूरी पार्टी थी, जाते तो ऐसी शायद घटना नहीं होती। लेकिन ये प्रभु ने लीला करनी थी। ये बाद में विस्तार में बताया गया है कि सार्वभौम का उद्धार करने के लिए ही भगवान आए यहां पर जगन्नाथपुरी में। ये भी सार्वभौम का सौभाग्य ही है कि अपने घर ले जाने का मौका मिला उनको। यही गंभीरता है ईश्वर चरित्र की, जिसे श्री नित्यानंद जानते थे। देखो इस प्रकार सार्वभौम के मंदिर में प्रभु ने गमन किया। चारों ओर हरि ध्वनि करते करते सब अति प्रसन्न चित्त से बहन करते जा रहे थे। सब बोल रहे थे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब जो लोग लेके जा रहे थे साथ में बोले भी जा रहे थे हरि बोल, हरि बोल। उसी समय सिंह द्वार पर सब भक्त आकर के मिले तथा उनका तथा सबका मन प्रसन्न हुआ। सबने परम अद्भुत ऐसा दृश्य देखा कि पिपलिकाएं अन्न लेकर जा रही हों। इस प्रकार प्रभु को अनेक लोग उठाकर बड़े आनंद से ले जा रहे हैं। सिंह द्वार पर नमस्कार करके सब भक्त वृंदों ने प्रसन्न हो प्रभु के पीछे पीछे गमन किया। जब सब लोग प्रभु को उठाकर सार्वभौम के मंदिर में ले आए, तब दरवाजे की किवाड़े लगा दी गईं। ये देखकर प्रभु के भक्तगण भी आ गए। सार्वभौम का मन प्रसन्न हुआ और सबसे यथा योग्य प्रणाम व संभाषण करके बैठ गए और तत्क्षण सब संदेह मिट गया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी बड़े खुश हुए, सुखी हुए। देखो कैसे भाग्योदय होने वाला है उनका, जिनकी केवल कीर्ति मात्र से ही वेद व्याख्या करते हैं, वे ईश्वर स्वयं बिना प्रयास के उनके मंदिर में मतलब उनके घर में आ गए। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि जन्म लेने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े जन्म लेते हैं, बहु नाम जन्म नांत, कई जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके। और यहां पर भगवान स्वयं कोई बहाना बना करके, ये बहाना तो बनाइए, बेहोश हो जाते हैं और कुदरती उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य भी मंदिर में आ जाते हैं और वो उठा करके ले जाते हैं अपने घर में। तो ये एक बहाना बन गया, तो कृपा कृपा का बहाना है ये। महाशय सार्वभौम जी ने श्री नित्यानंद जी को देख करके अति विनय पूर्वक उनकी चरण धूलि ली। सार्वभौम ने उन सब के साथ एक सेवक भेज दिया, तब जगन्नाथ दर्शन के लिए सब गए। उनको कहा भी अभी तुम लोग दर्शन करो जगन्नाथ जी के, और इनको अभी यहां पर ही आराम करने दो महाप्रभु जी को। जो सेवक जगन्नाथ दर्शन कराने को गया था उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हाँ अभी अभी उसको डर था अभी देख अभी दोबारा कुछ गड़बड़ ना करेंगे, ये हाथ जोड़े और कहा क्या सब लोग स्थिर होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करना, बड़ी हल्लाचल्ला मत बचाना और पहले गुसाई की तरह मत करना जैसे पहले गुसाई ने किया। पहले कौन से गुसाई? चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौर हरि ने जो किया वैसे मत करना, बिल्कुल शांत भाव से दर्शन करना भगवान के। ये कौन बोल रहा है? जो पुजारी जिसको सार्वभौम भट्टाचार्य ने दर्शन कराने के लिए भेजा था उनको। तुम लोग कैसे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले गुसाई की तरह मत करना ऐसे, कुछ समझ में नहीं आता, यदि स्थिर होकर दर्शन करो तो मैं दर्शन तुम्हें कराने ले जाऊं। अगर भाई तुम शांत भाव से स्थिर होकर के दर्शन करोगे तब तो मैं ले जाऊं, नहीं तो फिर सोच लो आप। तुम्हारे एक जन ने जैसा किया, तुम्हारे एक आदमी ने जैसा किया है, उसे जगन्नाथ जी देववश ही सिंहासन पर स्थिर रहे हैं। और अधिक क्या कहूं, जिसने देखा वही जाने। देखो ऐसी बिछाड़ खाने से क्या दूसरे की देह में भी प्राण रह सकता है क्या? तुम सब इसका इतना अचिंत्य कथन है, तुम सबका इतना अचिंत्य कथन है कि इसलिए मैं निवेदन करता हूं जरा संभल करके दर्शन करना। सब भक्त वृंद सुनकर हंसने लगे और चिंता मत करो, चिंता मत करो, यूं कहकर सबने गमन किया मतलब जाना शुरू किया। सबने आकर जगन्नाथ चतुर्व्यूह का दर्शन किया, तब भक्तगणों को परमानंद हुआ। दर्शन करके सब रोने लगे तथा बार बार दंडवत प्रदक्षिणा वह अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। भगवान के आगे दंडवत भी करना चाहिए और साथ में कुछ बोलना भी चाहिए, स्तुति भी करनी। कुछ मंत्र नहीं आते तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, मतलब कुछ ना कुछ उच्चारण करना चाहिए। चुपचाप नहीं खड़े होना चाहिए भगवान के आगे। अगर कुछ कथा चल रही है तो वहां पर चुप मुंह में बोल सकते हैं। तो उन सबने प्रदक्षिणा भी की, बार बार दंडवत प्रणाम भी किया। ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर, जो ब्राह्मण लेके गया था, ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के गले की माला लगाकर सबके गले में दी। माला रूप प्रभु आज्ञा पाकर सब लोग आनंदित मन से शीघ्र सार्वभौम के भवन में आए। देखिए यहां पर एक शब्द नोतम दास जी ने कहा है, भगवान के नाम में, भगवान में खुद में, भगवान का जितना भी पैराफर्नेलिया है, भगवान का हार, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर किसी को भगवान की माला मिलती है तो समझो साक्षात आपको भगवान आपके गले में आ गए हैं, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। प्रभु को जैसी आनंद मूर्छा हुई थी उसी प्रकार तब भी थी, उन्हें तिल मात्र भी वाह्य ज्ञान नहीं था। जब वो घर पहुंचे सार्वभौम भट्टाचार्य के, तो अभी भी चेतन महाप्रभु जी अपनी समाधि में, कह लो मूर्छा में कह लो, वो थे उस समय। सार्वभौम तो प्रभु के चरणों के नीचे बैठे हुए थे, भक्तगण चारों ओर घेर कर राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम ये भक्तगण ये बोलना शुरू किया। भक्तों ने श्री गौरचंद्र के चरित्र चिंतन के परे वह मन बुद्धि से अगोचर है। अपने मन बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं गौर हरि के चरित्र को। महाप्रभु को तीन प्रहर, जैसे आठ प्रहर होते हैं ना 24 घंटे में, आठ प्रहर, तीन प्रहर, चार प्रहर दिन में होते हैं, चार प्रहर रात को होते हैं। पहला प्रहर शुरू होता है सूर्य निकलने से, एकदम जब सूर्य निकलता है तो पहला प्रहर शुरू होता है। तो ऐसे यहां पर बताया गया है कि महाप्रभु को तीन प्रहर, एक प्रहर लगभग 2.5-3 घंटे का होता है ना, 2.5-3 घंटे मतलब 2.5 घंटे लगाओ या 3 घंटे लगाओ, तो तीन प्रहर मतलब 9 घंटे लगा दो, 8-9 घंटे, 8.5-8 घंटे, इतना प्रभु जी भगवान अपने स्थिर मुद्रा में रहे, समाधि में रहे या बेहोश रहे, ऐसा बोल सकते हैं। महाप्रभु को तीन प्रहर में भी कदाचित बाह्य ज्ञान नहीं हुआ, तब कुछ क्षणों में सब जगत के जीवन श्री गौर उठ बैठे। तीन प्रहर के बाद उठ गए वो, तथा सब भक्तगण हरि बोल ये ध्वनि करने लगे। श्री गौरचंद्र ने स्थिर होकर सबसे पूछा कि आज मुझे क्या हो गया था ये भी लीला कर रहे हैं, आज मुझे क्या हो गया था, कुछ कहो तो सही। अंत में श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप जगन्नाथ जी को देखने मात्र से ही मूर्छित हो गए थे, दैव योग से सार्वभौम वहीं थे, ये आपको उठा करके भवन में लेवा लाए। ये तो भला मानो भगवान का के सार्वभौम वहां पर थे, आपको उठाकर ले आए, वहां पर तो कोई भी नहीं था, क्यों नित्यानंद भी वहां पर नहीं थे, उनका बाकी साथी भी नहीं थे, वो तो अकेले गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये आपकी किस्मत है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर उपस्थित थे, वो आपको यहां पर ले आए उठा करके। आप प्रेमानंद आवेश में विवश हो गए थे और तीन दिन में तीन प्रहर तक वाह्य ज्ञान नहीं था आपको, ये सार्वभौम आपको नमस्कार कर रहे हैं। श्री प्रभु ने शीघ्र ही सार्वभौम को गोदी में ले लिया, मैं कोली भर ली। श्री प्रभु ने कहा, जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं, देखो मुझे सार्वभौम के स्थान में ले आए। मेरे चित्त में बड़ा संदेह था कि श्री सार्वभौम का साथ मुझे कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण ने बिना प्रयास के ही मन का विष्ट पूर्ण कर दिया। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं, खुद ही करने वाले हैं, खुद ही बोल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जो इस प्रकार कहते हुए सार्वभौम की ओर देखकर प्रभु हंसे। प्रभु ने कहा, मेरा प्रसंग सुनो, मैंने श्री जगन्नाथ देव को जब सम्मुख पाया तब श्री जगन्नाथ जी को देखते ही मेरे मन में आया कि मैं उनके वक्ष स्थल के भीतर उनको धारण कर लूं, या उनके वक्ष स्थल के अंदर घुस जाऊं मैं, या उनको अपने वक्ष स्थल में धारण कर लूं। मैं उन्हें पकड़ने ही गया था उसके पीछे क्या हुआ सो मुझे क्या मालूम। कहते वो बोलते, मैं तो उनके पकड़ने गया था उनके वक्ष स्थल में घुसने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या मालूम है। आज दैव योग से सार्वभौम पासी थे, अतः इस महासंकट से मेरी रक्षा हो गई। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि आज से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बाहर से करूंगा, अब मैं कभी भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। भीतर मतलब जहां आम पब्लिक दर्शन करती है, गौड़ स्तंभ लगा हुआ है ना, तो बाहर अंदर जाइए तो वो जंगला सा बना हुआ है ना, तो अंदर पहले मैं गया हूं बहुत पहले, और अंदर आजकल टिकट हम तो फ्री ले गए थे हमें, लेकिन आजकल टिकट लगती है शायद, बिल्कुल भगवान के चरणों में आपको खड़ा कर देंगे, हाथ लगा सकते हैं वो पर। तो इससे पता चलता है कि जो गौड़िया भक्त हैं उनको सबसे आगे वहां पर नहीं जाना चाहिए, दूर से ही गौड़ स्तंभ तक प्रणाम कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल भगवान को छूने के लिए, यह हमें सीखना है। तो अतः इस महासंकट मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि आज से श्री जगन्नाथ दर्शन बाहर से करूंगा। फिर अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े रहते थे, आपने देखा होगा गेट के ऊपर बाईं तरफ वो हाथ लगे हुए हैं, अंगुलियों के निशान लगे हुए हैं अभी भी वहां पर, हमें वहां पर प्रणाम भी करना चाहिए। सो आज के बाद मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, गौड़ स्तंभ के पीछे से भगवत दर्शन किया करूंगा। भाग्यवश आज मैंने श्री जगन्नाथ देव को पकड़ा नहीं, अन्यथा मेरे लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता। नित्यानंद जी ने कहा, यह बड़ी रक्षा हो गई, अब समय नहीं है, शीघ्र स्नान करिए। प्रभु बोले, हे नित्यानंद, मुझे संभालना, ये देह मैंने तुम्हें सौंप दी है। नित्यानंद जी को बोलते, तब कुछ देर में प्रेम से सुखपूर्वक स्नान करके सबके साथ प्रसन्नचित होकर के बैठे। अनेक प्रकार का महाप्रसाद शीघ्र, अभी तब तक जो समुद्र में स्नान करने गए थे और तब तक सार्वभौम जी ने जितना किस्म का प्रसाद जगन्नाथ जी को भोग लगता है वो प्रसाद के रूप में वो सब ले आए और वो सब भक्तों को बांटा उन्होंने। श्री गौर प्रभु ने महाप्रसाद को देखकर नमस्कार किया, सब परिवार को लेकर भोजन करने बैठे। यहां से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें महाप्रसाद मिलता है या हमारी थाली में आता है तो पहले हमें नमस्कार करना है महाप्रसाद को, सारे प्रसाद को नमस्कार करना है ग्रहण करने से पूर्व, महाप्रसाद को तो करना ही करना है, जो बाकी प्रसाद जो है वो भी प्रसाद ही है तो उसको भी प्रणाम करने के बाद ग्रहण करना है। हम तो बोलते भी हैं, प्रभुपद ने सिखाया है महाप्रसादे गोविंद। तो यहां पर प्रसाद को नमस्कार करके भोजन के लिए बैठ गए। प्रभु ने कहा, लाफरा साग तो मुझको दो। तो लाफरा साग है, लाफरा साग क्या होता है मुझे नहीं पता, क्या होता है लाफरा साग बंगालियों को होता है, लाफरा साग जो है वो आप मुझे दे दो, और सब जो मीठा मीठा है पाना छेना बड़ा आदि ये इन लोगों को तुम लोग बांट लो आपस में, मुझे केवल साग दे दो। इस प्रकार कहकर प्रभु बड़े प्रेम रस से लाफरा खाने लगे और भक्तगण प्रसन्न होने लगे। सार्वभौम जन्म जन्म के प्रभु के पार्षद हैं, अन्यथा दूसरे को यह संपत्ति प्राप्त नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि सार्वभौम बिशक इस जन्म में ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी की उन पर कृपा हो रही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत भक्ति की है पहले की। ऐसे नहीं है अचानक ही उन पर कृपा नहीं होगी भगवान की, वो जन्म जन्म से प्रभु के पार्षद रहे हैं वो, अन्यथा दूसरे को ये संपत्ति प्राप्त नहीं होती। सार्वभौम स्वयं ही स्वर्ण की थाली में लाकर अन्न दे रहे थे, सोने की थाली में लाकर के दिया उनको भगवान को, और प्रभु भोजन कर रहे हैं। उस भोजन पान के समय जितना प्रेम आनंद हुआ श्री चैतन्य देव के उस प्रसंग को व्यास वर्णन करेंगे। अनगिनत कौतुकों के साथ भोजन विलास करके महाप्रभु जी विराज गए और भक्तवृंद चारों ओर घेर कर बैठ गए। नीलाचल में प्रभु का भोजन विलास बड़े आनंद से हुआ, जिसके सुनने से चैतन्य चंद्र का संग प्राप्त होता है। देखो ग्रंथकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि जो ये कथा ही सुन लेता है नीलाचल के प्रभु का भोजन विलास बड़े आनंद, जिसको सुनने से ही चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हो जाता है। तो हमें सबको संग प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ, ये फील कीजिए संग प्राप्त हो रहा है। वो शेष खंड में गौरचंद्र नीलाचल में आए, इस प्रसंग के सुनते ही मनुष्य प्रेम रस में डूबने लगता है। श्री कृष्णचंद्र तथा श्री नित्यानंद मेरे जीवन प्राण हैं, उनके जुगल चरणों के सनिध में मैं श्री वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूं। उसके बाद क्या होता है कि जया जया श्री कृष्ण चैतन्य गुणधाम, जया जया नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जया जया वैकुंठ नायक कृपा सिंधु, जया जया न्यासी चूड़ामणि दीन बंधु। गुणों के धाम श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद स्वरूप के प्राण प्रभु की जय हो। वैकुंठ नायक गौरचंद्र कृपा सिंधु की जय हो। सन्यासियों के चूड़ामणि और दीन बंधु की जय हो। भक्त मंडली के सहित गौरंग महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चंद्र की कथाओं के सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। भाइयों शेष खंड की कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिस भांति श्री गौर चंद्र ने विहार किया। श्री चैतन्य चंद्र की कथा अमृत है। इस प्रकार श्री गौरचंद्र नीलाचल में अपने कौतूहल से आत्म गोपन अर्थात निस्वरूप को तत्व को उन्होंने छिपा लिया था, और बाद में कहा किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा। के महाशय मैं तो यहां पर दर्शन करने के लिए आया था, अपने हृदय की बात करता हूं, मैं जगन्नाथ दर्शन के लिए आया था, उससे मेरा मूल उद्देश्य तो आपके यहां आना था, यहां कह भी दिया भगवान ने। वैसे तो मैं यहां पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य क्या था कि आपके दर्शन करना। जगन्नाथ तो मुझसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप ही मेरे बंधनों को पूर्ण रीति से छेदन करें। आप में श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति विराजती है और आप ही उस कृष्ण प्रेम भक्ति को देने में समर्थ हैं, इसी कारण मैंने आपका आश्रय लिया है। अब जिसमें मेरा श्रेय हो आप बात करें, मेरे लिए क्या करणीय है, मैं किस प्रकार आचरण करूं जिससे मैं संसार कूप में ना गिरूं, सभी उपदेश मुझे समझा कर कहें, मैं तो आपका ही हूं, हर प्रकार से ये आप जाने। गुरु के पास जाकर के ऐसा ही बोलना चाहिए, जिसमें मेरा भला है आप बोलिए। तो यहां तो प्रभु वैसे एक्टिंग कर रहे हैं यहां पर, जिसमें मेरा भला है आप बोलिए। तो इसमें याद रखो, इसमें ये एक बात बताई गई है, जब आदमी संन्यास ले लेता है ना, या किसी बड़ी पोजिशन पर होता है, उसमें थोड़ा सा ईगो अहंकार आ जाता है, वो औरों को नमस्कार नहीं करता, वो देखता है कि सब लोग मुझे नमस्कार करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही जूनियर सन्यासी जो है वो है, और उससे सीनियर 20 साल पुराने वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इच्छा ये करता है मन में कि ये मुझे नमस्कार करें, जबकि जो पुराना भक्त है उसके पिता के बराबर या उसके गुरु भाई तो वो भी नमस्कार करे मुझे, ऐसा कभी कभी मन में आता है। तो ये बातें कौन बता रहा है? सार्वभौम भट्टाचार्य। किसको बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जी को। जब उन्होंने बोला कि मुझे आप शिक्षा दीजिए, तो वो जीव के धर्म के बारे में बताने लगे हैं, और जीव को क्या करना चाहिए, तुमने तो संन्यास ले लिया, तुम तो संन्यास नहीं लेना, यहां ये बात कही ना, जब तुम्हें तो संन्यास नहीं लेना चाहिए था, तुम तो अभी सुंदर हो, छोटी उम्र है आपकी, है ना, तो कैसे पालन करोगे, ये संन्यास आपके पास का बात नहीं है। ये सोच करके उन्होंने ऐसी ऐसी फिलॉसफी देनी शुरू करी कि जिस प्रकार मैं बोलूंगा आप शुद्ध हो जाओगे, आपको संन्यास की बातें जो है समझ में आ जाएंगी, ये उपदेश देना शुरू किया, उनको जीव तत्व के बारे में देना शुरू किया है। भक्ति योग पूर्ण सार्वभौम के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र नारायण बड़े प्रसन्न हुए। यहां पर नारायण क्योंकि जितने भी ये सन्यासी होते हैं वो एक दूसरे को नारायण कहते हैं, नमो नारायण, जब भी मिलते हैं ना नमो नारायण, तो इनकी फिलॉसफी यही है कि एक दिन मैं भी नारायण बन जाऊंगा, हम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी ब्रह्म बन गया, नारायण बन गया, तो जितने भी आपस में मिलते हैं वो नमो नारायण कहते हैं। भक्ति योग पूर्ण सार्वभौम के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र नारायण बड़े प्रसन्न हुए। श्री गौरचंद्र ने कहा, सार्वभौम महाशय सुनो सुनो, निश्चय ही सन्यासी मत बन जानो, आप मुझे सन्यासी मत जानो, ठीक है मैंने सन्यास तो ले लिया है, हाँ उसमें यह भी कहा था ना कि भारती से सन्यास लिया, क्योंकि सन्यासी कोई गिरी होते हैं कोई भारती होते हैं, तो भारती जो सन्यासी हैं वो थोड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य के समझने के अनुसार वो थोड़ा नीची कैटेगरी में आते हैं ना, तो तुमने लिया भी सन्यास, कहाँ ले लिया, भारतीय संप्रदाय में ले लिया सन्यास, और उम्र भी तुम्हारी छोटी है, तुमने तुम्हें क्या सीखा होगा तुम्हें, तो ये सन्यास का आचरण तुम नहीं कर पाओगे, तो ये सब समझाने के लिए ही उन्होंने सारी कथा की सार्वभौम भट्टाचार्य ने। मैं तो श्री कृष्ण से विरह विक्षिप्त होकर, हाँ द्वारा पढ़ता हूं, भक्ति योग पूर्ण सार्वभौम के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र नारायण बड़े प्रसन्न हुए। श्री गौरचंद्र ने कहा, सार्वभौम महाशय सुनो, मुझे निश्चय ही सन्यासी मत जानो, जितना सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूं, वो बहुत लंबी शिक्षा दी है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को, क्योंकि वो तो भगवान नहीं मान रहे थे उनको, वो तो साधारण एक भक्त मान रहे थे उनको, सन्यासी भी नहीं मान रहे थे एक्चुअली। मैं तो श्री कृष्ण के विरह में विक्षिप्त होकर सिखा सूत्र को त्याग, सिर मुंडाकर घर से बाहर आया हूं, मैं तो मुंड मुंडा करके आ गया हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं, मेरे प्रति सन्यासी का भाव छोड़ दो, मत सोचो मैं सन्यासी नहीं हूं, ऐसा भाव अपने मन में मत लगाओ, और ऐसी कृपा करो जिससे मेरी बुद्धि श्री कृष्ण में लगे। ग्रंथकार यहां पर कह रहे हैं, प्रभु होकर अपने दास को इस प्रकार मोहित करते हैं, ऐसी माया में दासगण कैसे प्रभु को जाने, यदि प्रभु अपने को ना जनाए, देखिए ये भी, जब तक भगवान ना चाहें हम भगवान को समझ सकें, तो हम जितना मर्जी प्रयास कर लें हम नहीं समझ सकते भगवान को, नहीं तो आमतौर पर लोग कहते हैं वो क्या आप हमें भगवान के दर्शन कराओगे, पहले तो उसके योग्य बनना चाहिए, हमें योग्य बनो पहले,
और उसके बाद योग्य बनने के बाद भी, योग्यता प्राप्त करने के बाद भी, जब तक भक्तों की और भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते। दर्शन तो करने दूर हैं, और जब आप भक्त बन जाती हैं तो भगवान स्वयं आपके दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज के दर्शन करने के लिए गए हैं भगवान। यदि प्रभु अपने कौन को ना जनाए तो किसी किसकी शक्ति है कि उन्हें जान सके। प्रभु को ना पहचान कर सेवक को कुछ कहते हैं उससे भी प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभु सब समय दास के साथ क्रीड़ा करते हैं और सेवक के लिए ही स्वयं अवतार धारण करते हैं। भगवान प्रित्राणाय साधुना, प्रित्राणाय साधुना, भक्तों की त्राण के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। और यहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए एक जगन्नाथपुरी में आए हैं। वो जिस प्रकार सेवक श्री कृष्ण के चरणों को भजते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण स्वयं दासों का भी भजन करते हैं। ये मत समझो कि केवल मैं भगवान को जाप कर रहा हूं और भगवान मुझे नहीं जाप कर, भगवान भी आपके नाम का जाप करते हैं। जब आप भगवान को याद करते हो भगवान भी आपके नाम का जाप करते हैं, आपको याद रखते हैं वो। खैर समय थोड़ा है इसलिए फटाफट मैं शॉर्ट करूंगा। पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, बड़ी चीजें इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, बहुत इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। हृदय पिघल जाता है आदमी का जब हम कथाएं सुनते हैं तो, लेकिन समय नहीं है। खैर बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बोला कि आप श्रीमद् भागवतम के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताते हैं श्रीमद् भागवतम में के बारे में। ये कथा लगभग 7 दिन तक चलती रही और चैतन्य महाप्रभु जी चुपचाप सुन रहे हैं। 8वें दिन भगवान बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं भगवान से कि मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं से बोला हूं? खाली भगवान सिर हला रहे हैं, आ रही है समझ में, आ रही। ठीक है फिर क्या समझा, क्या समझा, कुछ बोलो तो सही। कहते समझा क्या कि जो आपने बताया ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने कृपा करके भागवतम के श्लोकों का उल्लेख किया उसके आगे और अपने छठभुज रूप के दर्शन दिए सार्वभौम भट्टाचार्य के। सार्वभौम भट्टाचार्य ने दर्शन किए और गदगद हो गया और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। कहता प्रभु जी अभी प्रार्थना की है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत सारी प्रार्थना की है, टाइम नहीं है बोलने का, आपने बहुत कृपा की, मैं तो बड़ा अभिमानी था, जो कि आमतौर पे जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान का अभिमान होता है, मेरे से बढ़कर के होते बड़े ज्ञानी, वैसे भी बड़े लायक होते हैं, पढ़े लिखे भी बड़े होते हैं, उनके सामने हम लोग कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, हमें वो हरा देंगे। कहने का मतात्पर्य है कि बहुत लायक होते हैं, विद्वान होते हैं वो। सो यहां पर जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना भाष्य उनको बताया और अपने दर्शन कराए छठभुज रूप के, तो चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, पसीना आने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। मैं तो प्रभु जी आपको ऐसे ही समझ रहा था, साधारण व्यक्ति समझ रहा था, हाँ सन्यासी थे, आप में कुछ ना कुछ लक्षण हैं अच्छे भक्तों के, तो कृपा करके मुझे माफ कीजिए। तो यहां पर कथा के अंत में मैं पढ़ा तो नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है अभी। वृंदावन दास ठाकुर ने यहां पर बताया है कि जो भी इस लीला को, जो पहली लीला पढ़ी प्रसाद की भी और ये लीला भी, जब भगवान ने अपने छठभुज रूप का दर्शन कराया है, इसको सुनता है पड़ता है उसको अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा होती है, कृष्ण धाम के जाने के वो योग्य बन जाता है। बोलिए गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। सॉरी मैं पूरा नहीं सुना सका आपको, जल्दी जल्दी में जितना फास्ट स्पीड में गया हूं पता नहीं समझ आया कि नहीं आया है। धन्यवाद, माफ करना मुझे। हरे कृष्ण।